Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Chiptah Sansar Vatena Cheshtate Susk Parvat. Very sundar charcha. Unhone kaha Nirvasanu. जिसके अंतर्गत से कामना निकल गई, वासना निकल गई, निर्वासित हो गया, वासना से रहित हो गया, और वासना से रहित हो गया तो कहने लगे निरालंब। तो उसने सारे सहारे छोड़ दिए, आलंबन छोड़ दिए, अब किसी का सहारा ग्रहण नहीं किए। और जब तक वासना कामना रहती तब तक सहारों की आवश्यकता पड़ती। अब निर्वासनो निरालंब, आलंबन से रहित हो गया, और जो इतना काम कर लेता है, जो वासना से रहित हो गया, आलंबन का त्याग कर दिया, तो क्या होता? स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता। आजकल तो स्वच्छंद शब्द का अर्थ है उच्छृंखलता, लेकिन ये नहीं। स्वच्छंद का अर्थ क्या है? स्व माने अपना और छंद माने गीत। अब क्या हुआ? जो इस प्रकार से इहा से रहित, कामना से रहित हो गया, आलंबन का जिसने त्याग कर दिया, उसका फिर क्या है? अपना गीत। अब उसे पराधीन नहीं होना पड़ता। भई यदि किसी दूसरे से वह सुनना चाहेगा, आनंद लेना चाहेगा, तो वो संगीतज्ञ का मूड है या नहीं है, है ना, वो उपस्थित है अथवा नहीं है, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन यदि अपना ही गीत है तो जब इच्छा हो तब उसका आनंद ले सकते। तो इसलिए कहा स्वच्छंद, वो स्वच्छंद हो जाता, अर्थात अपने में ही आनंदायित होने लगता, अपने भी ही मग्न हो जाता। और आगे संकेत किया मुक्त बंधना, सारे बंधनों से भी वह रहित हो जाता। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक तो उदाहरण दिया चेष्टते शुष्क पर्वत, सूखे पत्ते का उदाहरण दे दिया। क्यों? जब तक पत्ता हरा है, उसके अंदर हरा तब तक है जब तक रस विद्यमान, और जब तक उस पत्ते में रस विद्यमान है, हरा है, तो रस को ही वह आसक्ति कह दो, कामना कह दो, और वो जब तक वासना है तब तक पत्ता क्या किए? टहनी का आसारा ग्रहण किए, टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए, और टहनी का आलंबन ग्रहण किए हुए तो क्या होता? छिपता संसार बातें, वायु आती है और उस पत्ते में थपेड़ा लगाती है, पत्ता दौड़ करके आगे जाता है उसके धक्के से, लेकिन वह वासना सहारा पकड़े हुए होने के कारण पुनः वापस, और बार बार ये थपेड़े खाता रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। लेकिन यदि उसमें से रस चला गया, और रस चला गया, उसने टहनी का त्याग कर दिया, और जब टहनी का त्याग कर दिया तो पत्ता नीचे गिर गया। अब वो शुष्क पत्ता है, अब वही वायु आती जो पहले थपेड़ा लगाती थी तो पत्ता बेचैन होता था, अब वही वायु आ रही, और वही वायु आती है तो पत्ता क्या करता? वायु आती है, वायु से उड़ाना चाहती है, पत्ता की अपनी कोई कामना है ही नहीं, इसलिए वो वायु के साथ चल पड़ता, नृत्य करने लगता, और नाचता हुआ, अब उसका कोई आग्रह भी नहीं, ये भी छूट जाते। अब जो है वायु ले जाकर के उसे किसी कीचड़ में डाल दे तो वहां भी पड़ जाता, किसी देवालय में डाल दे तो वहां भी पड़ जाता, उसका कोई दुराग्रह। अब तो वो क्या है? तो यही है इसकी स्वच्छंदता, अपने में मग्न है, जैसी हालत है वैसे में वह प्रसन्न है। और क्यों? अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता। इसी प्रकार से यहां चर्चा कर रहे हैं रसवर्जम, ये कब हुआ? जब रस चला जाता है, और रस कब जाता है? जब परम को समझ लेता। तो ये कामना ही हमारे अंदर बंधन का हेतु है, और कामना है ही अज्ञान पूर्वक, अज्ञान को लेकर के ही अहम और मम को लेकर के कामना, ये सब होते हैं। तो अब जब इस प्रकार की जब कामना से वह रहित हो जाता, वही यहां संकेत कर रहे संत कुमार के अंतर्गत, जिन्होंने उस कामना को ही मार दिया है, जिनके अंदर कामना ही नहीं रहती, और वो जो है अपने बाल्य भाव में बैठे हुए, और जब बाल्य भाव में बैठे हुए तो ऊंट का शरीर भी उन्हें मिल गया, तो अब उनका दुराग्रह नहीं कि मनुष्य शरीर वो बेचैन हो, वो उसमें भी मस्त है। और मस्त हैं, पार्वती शिव तो चले गए, कुछ वर्षों के बाद वापस आए, देखा भगवान शिव ने तो फिर भी कोई विचार नहीं किया, वो तो अपने स्वरूप में मस्त रहे। पार्वती ने देखा, और देखा जैसे लोक में हमारा कोई प्रतिरोधी होता है और उसे कोई कष्ट आ जाता है तो हम लोग व्यंगात्मक ढंग से पूछते हैं, ठीक हो ना? पार्वती ने कहा ठीक हो ना? अब जब ऐसा संकेत किया तो ऊंट के शरीर से संत कुमार ने संकेत किया कि बड़ी कृपा है मां, बड़ा आनंद है। जब ऐसा कहा तो पार्वती को आश्चर्य हुआ, ये क्या कह रहा? तो कहा क्या मतलब? कहने लगे मतलब ये है, पहले बड़ी झंझट थी, मनुष्य शरीर होने के कारण सुधा लगती थी तो भिक्षाटन करना पड़ता था और भिक्षाटन के नियमों का पालन करना पड़ता। अब तो बड़ा ही सुख है, सारे झंझट दूर हो गए, कोई भी अब उपद्रव नहीं, अब तो ऊपर मुख किया, कांटे ही क्यों न हो, और तृप्ति हो गई, सारा भिक्षाटन आपका झंझट खत्म। मनुष्य शरीर होने के कारण मनुष्योचित व्यवहार भी करना पड़ता, अब वो भी सारे झंझट दूर। विसर्जन आदि के बाद जो स्नान आदि की समस्या थी कहा वो भी नहीं रहेगी, अब तो बड़ा आनंद। ये जैसे ही कहा पार्वती को अब समझ में आ गया कि ये तो अपने बाल्य भाव में स्थित है, इसके अंदर कोई ईया है ही नहीं, ये तो प्रकृति से भी परे है। और जब ये भाव आया तो पार्वती ने क्या कहा? पार्वती ने कहा कि अच्छा अब तू मेरे से वरदान। सनत कुमार से जब कहा कि वरदान मांग लो तो सनत कुमार कहने लगे कि सारे झंझटों से निवृत्ति हो गई और अब हम क्या वरदान मांगे, अब हमें कोई इच्छा नहीं, इसमें बड़ा आनंद है, इसलिए हमारी तो कोई वरदान मांगने की इच्छा है ही नहीं, हम तो यही चाहते कि ये ऊंट का ही शरीर बना रहे। जब ऐसा कहा तो पार्वती ने कहा यदि तुझे वरदान नहीं चाहिए, अवसर देखा तो तू ऐसा कर मुझको ही दे दे। तो संत कुमार ने कहा मांग लो मां। पार्वती कहने लगी अच्छा अवसर, कहा यदि तू मेरे को मां कहता है तो मेरे यहां पुत्र के रूप में। और यही संत कुमार छांदोग श्रुति में आप सुनते हो, तन स्कंद मित्य आचक्षते, स्कंद के रूप में, कार्तिकेय के रूप में, है ना, षड्मुखादि जिनको कहते हो, वही जो है वहां पर अवतरित हुए, वही संत कुमार। तो ये संकेत आता तो ऐसे सर्वथा। अब यहीं पर एक बात और समझने की, संत कुमार जो हैं और गणेश ये दोनों जो है किसके पुत्र हैं? शिव और पार्वती। लेकिन बड़ी विलक्षण बात है, सनत कुमार का संबंध पार्वती से नहीं है और गणेश का संबंध शिव से नहीं, दोनों दोनों के पुत्र नहीं, एक एक के पुत्र हैं। अर्थात मने सनत कुमार सर्वथा प्रकृति से परे, भगवान शिव से संबंध है उनका, सदा शिव भाव में स्थित रहने वाले, मूल कारण में स्थित रहने वाले हैं, वहां जो प्रकृति है जो अज्ञान है उसके द्वारा होने वाली कामना संभव ही नहीं। ऐसे संत कुमार, तो इसको कहा बाल्य भाव। एक और कथा आती है इसी संबंध में, आपने श्रुतियों में सुना होगा राजा बृहद्रथ। बृहद्रथ बड़ा ही शौर्यशाली राजा था, बलवान राजा था, लेकिन उसने जो है अपनी बलवत्ता को लेकर के सारे देशों पर विजय प्राप्त कर ली, सारे देशों को अपने अधीन बना लिया और अधीन बनाने के बाद में अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने सारे देशों को अपने कब्जे में कर लिया, है मेरे समान कोई बलवान, है मेरा कोई दूसरा शत्रु, है कोई देश जिसे मैं जीतूं? गुरु समझ गए जिसका अहंकार और अहंकारी क्या है, तो तुलसीदास ने लिखा अहंकार अति दुखद डमरुआ, सारे दुखों का कारण क्या है। गुरु ने समझ लिया, गुरु ने कहा हां है, जब कहा है, कहा कहां है, कहा यही है, तो उसने कहा यहां तो आप हो, आप मेरे गुरु हो और मैं हूं, मैं आपका शिष्य हूं, यहां तो कोई शत्रु या देश आदि है ही नहीं, तो कौन है बतलाओ। गुरु ने कहा है, तो उसने तुरंत अपने जो है थाली बजाई, तो उसका चपरासी आदि चौकीदार आदि आ गया, उससे कहा बुलाओ सिपाहीलार को, बुलाओ जो है सेनापति को, आ गए वो सब, कहा सजा लो सेना, शत्रु पर चढ़ाई करनी। जब ये सब तैयारी कर ली, गुरु ने कहा ये सब क्या कर रहा, कहा आप कह रहे ना शत्रु है देश है उसे जीतूंगा, कहा इससे वो जीता जा सकता, ये बल काम नहीं आएगा, इस बल से नहीं जीत सकता, यदि तू इनसे इन शस्त्रों के रूपी बलों से और आप जो है प्रहार करोगे तो तेरी आंख फूट जाएगी, कान फूट जाएंगे, बहरा हो जाएगा। कहा क्या मतलब, का शत्रु कौन है, का और कोई शत्रु नहीं, तो आचार्य शंकर ने लिखा के शत्रवाह संति तो निजे इंद्रियाणी और के मित्र कान मित्रानी मित्राणी, और मित्र कौन है तो जितान ही आनी, ये इंद्रियां ही हमारी शत्रु भी हैं और इंद्रियां ही हमारी मित्र, ये संकेत किया। तो जब उन्होंने कहा कि वही और कोई नहीं है यही है, और इन्हीं में क्या बैठा हुआ, कहा रस विद्यमान है, कामना विद्यमान, क्यों आंख हम जहां ले जाना चाहते वहां नहीं जाती, किंतु आंख हमको घसीट करके ले जाती, कान हम जहां लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु कान हमको घसीट ले जाता, मन जहां हम लगाना चाहते वहां नहीं लगता किंतु मन को हमको घसीट ले जाता, ये नियम है। तो ये क्या है, ये तो शत्रु, तो संकेत किया, और इसको कबीर दास ने तो बड़ी सरल भाषा में लिख दिया। कबीर ने क्या लिखा, उन्होंने पद ही बना दिया, उन्होंने कहा यतन बिन मृगनन खेत उजारे, तारे नाही तरत निशवासर, बिडरत नहीं बिडारे, यतन बिन मृगनन खेत, अपने अपने रस के लोभी कर्तव न्यारे न्यारे, यतन बिन मृगनन खेत। क्या संकेत किया उन्होंने भी, ये इंद्रियों को ही मृग शब्द सीखा, ये जो है इन्होंने क्या है, हैं? तो भगवान ने जो कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य, यही खेत है, इसमें हम चाहें तो सुंदर फसल पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए इसकी दुर्लभता भी बतला दी गई कि बड़ा दुर्लभ है, हैं? तो ये संकेत करते हुए वहां भी उन्होंने कहा अपने अपने रस के लोग, आंख जो है क्या उसका आहार है, तो रूप, रूप को देखती, कान का क्या आहार है, कहा शब्द, नाक का क्या क्या आहार है, कहा सुगंध, और यहां इनको देखती है तो वहां हमको खींच ले जाती, हम जहां आंख को लगाना चाहते हैं वहां आंख जाती नहीं है, बोलते तो है हम लोग, शास्त्र कहता भी है आंख वही है, अनूप जलोठा ने भी कह दिया है आंख वही जो भगवान का दर्शन, और पे हैं सुख कान सुने बतियां फल लोचन आफन तो लहे, तुलसीदास ने भी लिखा कानों की सार्थकता क्या है, जो सुंदर कथा सुने, और इस बात को संत कुमार के विषय में लो तो तुलसीदास ने क्या लिखा, तुलसीदास ने लिखा कि ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखे बालक बहु काली, तो बालक भाई ये नियम है शरीर की अवस्था में परिवर्तन होगा, शरीर कभी बालक नहीं रह सकता, लेकिन वो बालकपना क्या है, किसको संकेत किया वहां, देखे बहु कालीना बहु काल पर्यंत, अर्थात मने उनके अंतर्गत वो बाल्य भाव था, इसलिए वो बाल्य भाव में स्थित थे, इसलिए उन्हें बालक शब्द से कहा, तो क्यों थे, तो सदा ब्रह्म के आनंद में ही आनंदायत थे, तो ब्रह्मानंद सदा लैलीना देखे बालक बहु कालीना, और क्या कहा रूप धरे जन चारियो वेदा, समदर्शी मुनि विगत, ये है समत्व दृष्टि। हम पढ़ते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडितः समदर्शना। तो वो सम क्या, सम का मतलब बराबर नहीं। और आज हमारे समाज में जो उपद्रव हो रहा वो क्यों, उस सम शब्द का अर्थ क्या है? उस सम शब्द का अर्थ बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी उपाधि कभी सम नहीं हो सकती, किंतु उस उपाधि में एक समता बैठी हुई, उस पर हमारी दृष्टि जाती नहीं। वही पंखा है, क्या करता है? वायु देता है। बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है। लेकिन बल्ब और पंखे को हम बराबर कहना चाहें, सम कहना चाहें, ये कभी हो ही नहीं। आंख भी एक बल्ब है ना, और नासिका से प्राणवायु आती है, पंखा ही समझ लो। कान जो है शब्द को ग्रहण करने वाला, आप ट्रांजिस्टर टीवी आदि समझ लो, और जो है ये सारी क्रिया, लेकिन इनमें समता नहीं है, विषमता भी है, लेकिन समता भी है। वो समता क्या है? इनके अंदर जो भी ये प्रकाश हो रहा है, जो चक्कर काट रहा है, ये जो हमारी आवाज को है विवर्तन कर रहा है, ये किसके बल से कर रहा है? तो इसमें बल किसका है? क्या ये स्वयं करने में समर्थ है? कहा नहीं है। ये प्रकाश करने में समर्थ है? नहीं है। और पंखा क्या वायु करने में समर्थ? कहा नहीं, लेकिन फिर भी कर रहा है। और इनमें भेद भी है, लेकिन फिर भी एक समता बैठी। वो समता क्या है? विद्युत। विद्युत रूपी बल जो है वो इसमें भी विद्यमान है, बल्ब में भी विद्यमान है, पंखे में भी विद्यमान है। उस विद्युत रूपी बल के द्वारा ही ये सारी क्रिया हो रही। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया, चाहे विद्यावान हो और चाहे हाथी गऊ आदि हो, और इतना कह दिया कि इतना ही नहीं, चांडाल ही क्यों हो, कुत्ता भी हो चांडाल, उसको पका करके कुत्ते को खाने वाला क्यों, सब में वह बल है। तो उस समता को, उसको यदि जब देख लेते हैं तो वही है समर्थ। उस सत्ता को यदि देखना हमारे अंदर आ गया तो उसी को सम कहते हैं। यही कहा समा सर्वेश भूतेश आदि गीता में नाना प्रकार से कहा, समत्व दृष्टि की भी चर्चा की। तो इस प्रकार से ये है क्या, बल। और किसी को चर्चा की समदर्शी मुनि विगत विभेदा, उन ऋषियों के अंतर्गत क्या थी, समत दृष्टि थी। माने एक जो कारणात्मना सत्ता थी, कारण रूप जो था, उस कारण रूप सत्ता को ही सर्वत्र वह थी, और कारण रूप सत्ता को देख करके ही वो समझते थे कि ये जो कार्य हो रहा है वो इस कारण के बिना हो सकता नहीं। तो मूल है कारण, कारण में दृष्टि रखने वाले थे, इसलिए उनके अंदर समत्व था। लेकिन उपाधि को, कार्य को लेकर के समता संभव नहीं हो सकती। तो इसलिए समदर्शी मुनिभ्योगत वेदा, और वेद शब्द माने चारियों वेदा, मतलब उनके अंतर्गत। चारियों वेदों का रूप क्या है, बात थोड़ी बढ़ जाती। वेद जो है वैसे तो एक ही है, विद धातु जो है ज्ञानार्थक भी है, और विद धातु सत्तार्थक भी है, और विद धातु अविकांक्षायाम अविकांक्षा अर्थ में भी है, और विद धातु जो है विद लाभे लाभ अर्थ में। विद धातु के चार अर्थ हैं, सत्ता, ज्ञान, अविकांक्षा और लाभ, और इन्हीं को लेकर के चार पुरुषार्थों की भी वर्गीकरण के हिसाब से कल्पना की गई। तो अब यहां पर जो है संकेत करते हैं, ऐसे वेद से संपन्न थे, लेकिन वो सत्ता और सत्ता का उन्हें ज्ञान था, इसलिए उनकी कामना जो थी, अभिकांक्षा थी, वो भी कहां थी, सत्ता में थी, असत्ता में कामना, और उस सत्ता का ही उन्हें लाभ था, इसलिए जब सत्ता का ही लाभ था तो सत्ता तो शाश्वत है। इसलिए कह दिया कि रूप धरे जिन चार्यो वेदा समदर्शी मुन विगत, इसलिए उनके अंदर कोई विभेद था ही नहीं, सदा अद्वैत रूप में वो मस्त रहते थे। लेकिन इतना होते हुए भी उपाधिवान थे, तो वो कैसे फिर आगे क्रिया, तो आगे संकेत किया कि ऐसा होते हुए भी उनकी स्थिति क्या थी, आशा वसन व्यसन यह तीन ही, बड़ी विलक्षण बात कही। कहा उनके वस्त्र क्या थे, उनमें आवरण क्या था, तो कहने लगे दिशाएं ही जिसका आवरण थी, आशा और व्यसन हम लोग भी कोई चाय का व्यसनी है, है कोई सिगार का व्यसनी है, कोई किसी का व्यसनी। तो अब कहा व्यसन क्या था, तो क्या संकेत किया, अकर्मण्य नहीं कहा, कहा आशा वसन विषन अति नहीं रघुपति कथा होए ता सुने। ये विषन था, एक वक्ता बन जाता था, तीन श्रोता बन जाते थे, कोई सुनने वाला मिल गया तो उसे सुनाते, नारद जैसे आ जाते तो उनको सुनाते थे, और कोई नहीं है तो आपस में। तो ये सब, और ये दूसरी तरह से हमारे अंतःकरण के जो चार रूप हैं उनको भी समझ लेना, और उस अंतःकरण में भी जब उस सत्ता का जो सत्यत्व है उसका ज्ञान होता है, और उसका जब ज्ञान होता है तो उसकी अभिकांक्षा अन्यत्र नहीं होती है, उसी सत्ता में होती है, और उसी का वो लाभ उठाता है, इसी को परम दृष्टा निवर्तते कह के, तब उसका रस जो है बाहर कहीं ग्रहण करने के लिए जाता, उसी से रसान्वित होता है, और उस अवस्था में ही कह दिया रसो वही शह है, रसम लब्ध्वा हेवा आनंदी भवति, वही रस स्वरूप है, और ऐसे रस को प्राप्त करके वो आनंदायत हो जाता। ये संकेत किया, तो ऐसे संत कुमार आदि थे, तो यहां संकेत कर रहे हैं कि जब इस प्रकार से हमारे अंदर समत्व दृष्टि आ जाती है, हमारा रस कहीं नहीं रह जाता है, तब क्या होता है, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर के, और जैसे पत्ता है तो वैसे ही संसार रूपी वायु और आती है, जहां रख देती है वहीं पर वो मस्त रहता है, जैसी स्थिति में रखती है वहीं पर मस्त रहता है, वहां उसका कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहता, इससे रहत हो जाता है। तो ऐसा बल जब जीवन में आता है तब ऐसे बल से वो युक्त होकर के और जो है क्या है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला और बलवान कहलाता है। केवल इंद्रियों को उनके आहार से निवृत्त कर देने का नाम बल नहीं है, वो उनको जीतना नहीं। वही गुरु ने जो है जरस वो क्या नाम ब्रद रथ से कहा कि इस प्रकार से तू जीत नहीं पाएगा, इससे तो तेरी इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, और इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी तो तेरे जीवन में जो है जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाए। इसलिए कहा जो है इन इंद्रियों को जीतने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय क्या है, परम दृष्टा निवर्तते, अर्थात इंद्रियों का भी, इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला, इंद्रियों में बल रहने वाला जो मूल कारण है, जो मूल सत्ता है, उस सत्ता को तू समझ, और जब उस सत्ता को समझेगा तो इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में फिर कामना राग द्वेष आदि नहीं रह जाएगा, और ये जब नहीं रह जाएगा तो तुझे बाल्य भाव की प्राप्ति होगी, वो बल तेरे में आएगा और तू विजयी हो जाएगा। संकेत किया, वही संकेत यहां पर जो है कर रहे, तो कौन सा बल हमें चाहिए, तो इंद्र भी यहां पर ईशु रूप से भी संकेत किया, तो बल का प्रतीक है, तो हमारे जीवन में क्रम से वही बतलाते हैं, हमें सहायक चाहिए, हमें मित्र चाहिए, सहयोगी चाहिए, वो सहयोगी कौन है, तो एक परमात्मा ही वास्तव में हमारा मित्र, वही सदा साथ देने वाला। और कहने लगे कि ये सब ठीक है, फिर जो है हम वर्ण भी किसका करें, तो कहा वही श्रेष्ठ है, वही वर्ण करने योग्य है, और वो कब वर्ण होगा, तो उसके लिए अरिमा शब्द से संकेत कर दिया, जब हमारा मन श्रेष्ठ होगा, हमारा मन सरल होगा, और सरल मन में ही उसकी वर्णता संभव है। और कहने लगे मन तो सरल हो गया, मन में सुसंस्कृतता तो आ गई, लेकिन वहां भी अहंकार बैठा हुआ है, वहां भी भेद बैठा हुआ, तो कहा तब भी बात नहीं बनेगी, तब बल चाहिए, वो बल कौन चाहिए, तो ये बल चाहिए, यहां पर किसी प्रकार की कामना क्रोध आदि न रहे, इनकी निवृत्ति हो जाए, उनको सहन करने में भी हम समर्थ हो जाएं, अर्थात तितिच्छु बन जाएं, ये जो है जब जीवन में आ जाता है तो ये ही साधन, साधन चतुष्टय बेवी शतक संपत्ति के अंतर्गत भी इनकी चर्चा की विवेक वैराग्य पूर्वक, और वही चर्चा यहां शांति पाठ में कर रहे हैं, और उसी की ऋषि याचना करता है कि ये जब हमारे जीवन में आएंगे तब जो है हम जिसके आगे कहेंगे ब्रह्मविद आपनोत ब्रह्म करके संकेत करेंगे आगे की बल्ली में, तो उनकी जो है उसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है और तभी हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि सन्नो इंद्र, इंद्र जो है तुम मुझे हैं सुख प्रदान करो, हमारे दुख की निवृत्ति करो, और दुख की निवृत्ति तभी होगी, सुख की निवृत्ति तभी होगी जो बल है वो बल हमें प्राप्त हो, और इंद्र यहां पर बल के प्रतीक माने गए, इसलिए ऐसे बल की याचना जो है ऋषि करता है, और ऐसी याचना करते हुए आगे जो है संकेत करता बृहस्पति, सन्नो दोनों के साथ संबंध है इसका, सन्न इंद्रो सं बृहस्पति, इंद्र भी हमारे लिए जो है इस प्रकार से हमारा जो है कल्याण करें। और आगे कहा बृहस्पति, अब बृहस्पति क्यों कहा तो इसकी चर्चा कल करें।